ओम शांति। आज का विषय तो सभी ने सुना, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य। हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यहां बैठे हैं। हम सभी ब्राह्मण बने, वो समय कौन सा है? संगम युग। इस संगम युग को वरदानी समय भी कहा जाता है, वरदानी युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी संगम युग पर स्वयं भाग्य विधाता वरदाता बाप भगवान स्वयं आकर के हम आत्माओं को अपना बच्चा बनाकर अर्थात ब्राह्मण बनाकर सर्व वरदानों से हमारी झोली भर देते हैं। सारे भंडारे हम आत्माओं के लिए खोल देते हैं, सारे खजानों की चाबी इस संगम युग पर ही हम बच्चों को बाबा दे देते हैं। अगर हम कहें कि सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करने का युग अगर कोई है तो वो भी कौन सा युग है? संगम युग। यहां तक कि जो हम जीरो कला बन गए थे, जीरो से फिर से 16 कला संपूर्ण पवित्र बनने का युग भी यही संगम युग है। वर्तमान संगम युग पर ही बाबा का हमें वरदान है जो और किसी युग में प्राप्त नहीं। अभी तक तो हम जैसा कर्म करते वैसा उसका फल भोगते आए हैं, जितना करेंगे उतना हिसाब से हमको कर्म का फल मिलता आया है। लेकिन संगम युग वो युग है जहां पर हिसाब किताब नहीं है, लेकिन बाबा हमको एक कदम चलने पर या एक श्रेष्ठ कर्म करने पर कितनी मदद करता है? एक का पदम गुणा। तो पदम गुणा प्राप्ति का समय युग वो भी संगम युग है। इस समय ही बाबा हमारे लिए स्वयं छत्र छाया बन जाते हैं, और वो ऐसी छत्र छाया होती जो माया के हर तूफानों से हमको बाबा सेफ कर देते हैं। या ये कहें कि संगम युग पर बाबा हमको अपना लाडला बच्चा बनाकर गोदी में लेकर धरती पर पांव भी नहीं रखने देते, लेकिन सदा ही खुशियों के झूले में, आनंद के झूले में, शांति प्रेम खुशी के झूले में सदा ही हमको झुलाते रहते। ऐसा सब कुछ प्राप्ति का समय, सदा खुशियों में झूलने का समय, अर्थात जिस आत्मा को संगम युग की ये सर्व प्राप्तियों से जिसका जीवन भरपूर होगा, थोड़ी कल्पना करके देखिए उसका जीवन कैसा होगा। सदा ही खुश। तो ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है वो है सदा बेहद की खुशी में रहना, अर्थात सदा आंतरिक खुशी, बेहद की खुशी कौन सी होगी? आंतरिक खुशी, अविनाशी खुशी, रूहानी खुशी। सदा उस खुशी के अनुभव में रहना। और कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में वो खुशी हमारी कम ना हो, ऐसे निरंतर उस खुशी का अनुभव करना, ये है वास्तव में ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य, जिसके लिए कई बार बाबा ने हमें वाणी में कहा है कि बच्चे भले शरीर छूट जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, चेहरे से खुशी की झलक नहीं जाए, खुशी की फलक नहीं जाए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को खुश नसीब के बदले बदकिस्मत ना समझें, हर हाल में हम खुश नसीब, खुशी में झूलने वाले, सदा खुश, ये हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। वैसे भी आप देखो, ब्राह्मण जीवन के जो चार विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो जितना जितना आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती जाती तो उसके जीवन में क्या आ जाता? खुशी। जितना जितना योग स्वरूप बनती जाएगी तो भी क्या आएगा? खुशी। जितना जितना गुणों और शक्तियों को धारण कर अपने जीवन को पवित्र बनाती जाती तो भी खुशी। और अगर चौथा सब्जेक्ट जो सेवा है, स्वयं सर्व प्राप्तियों से भरपूर होकर कई अनाथों को सनाथ बनाते, बाबा का परिचय देकर उनको उनके वर्षे के अधिकारी बनाते, उनके दुख अशांति को मिटाकर उनको खुशी, शक्ति, शांति, प्रेम, आनंद से उनकी झोली भरते, तो सबसे पहले उनको तो बाद में प्राप्ति होती, पहले किसको प्राप्ति होती? स्वयं को। बाबा कहते सेवा का प्रत्यक्ष फल, तुरंत फल क्या मिलता है? खुशी। तो चारों सब्जेक्ट का भी रिजल्ट क्या है? अगर हम ठीक रीति से चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई ठीक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज बाबा ने कहा पढ़ाई सहज भी है और सस्ती भी है, लेकिन सस्ती है लेकिन कीमती बहुत है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को कई बार कहते एक एक महावाक्य लाखों के बराबर है, क्योंकि ये रत्न है। तो इतने रत्नों को जो धारण कर ले उसका जीवन कैसा बन जाएगा, कितना कीमती। तो इसलिए ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, धारणा स्वरूप और सेवा जो करते उसका भी जो स्वरूप बनेंगे, तो चारों सब्जेक्ट से हमारे जीवन में खुशी मिलती है। तो आज हमको ये चेक करना है कि हम ब्राह्मण तो कहलाते, ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन हमारा जीवन सचमुच में खुशी वाला है? और वो खुशी निरंतर रहती है, सदा रहती है, आंतरिक खुशी है, बेहद की खुशी है, अविनाशी खुशी है, या खुशी के बदले हमारा ब्राह्मण जीवन मूंज में तो नहीं जा रहा है? इतना श्रेष्ठ जीवन, इतनी प्राप्ति वाला जीवन, कहीं वो कंफ्यूजन में तो नहीं गुजर रहा है? कई बार हम अपने आप में ही कंफ्यूज होते रहते, बन तो गए बाबा के, भगवान को भी मान लिया, पहचान लिया, लेकिन कई बार दूसरों की बातें सुनते, पुराने जिन्होंने ज्ञान छोड़ दिया उनका अनुभव सुनते, उनकी बातों को सुन करके कभी कभी मन मूंज जाता है कि कहीं हम राइट मार्ग पर जा रहे या रॉन्ग साइड जा रहे, कंफ्यूजन हो जाता है, संशय आने लगता है सचमुच में भगवान पढ़ाता है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मूंज हो जाती। और कभी कभी मूंज के बदले हमारे जीवन को हम किस तरह का पाते, उलझन वाला। तो ब्राह्मण जीवन जो खुशियों वाला है, खुशी के बदले मूंज वाला या उलझन वाला तो नहीं अनुभव होता। उलझन किसको कहेंगे? उलझन में क्या स्थिति होती है? या तो कोई समस्या परिस्थिति हमको उलझन में डाल देती है, या कोई बात किसी की ऐसी मन में लग गई है, कोई दुविधा मन में आ गई है, कहीं कोई परिस्थिति में हमको किसी ने धोखा दे दिया, कुछ भी परिस्थिति निर्मित हो गई, तो कई प्रकार के प्रश्न, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, होना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों कर दिया, अनेक प्रकार के प्रश्नों का जाल हमको उलझा देता है। अर्थात व्यर्थ संकल्प हमारे चलते रहते हैं, और इतना चलते कई बार तो हम उस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और उस व्यर्थ संकल्पों के जाल में हम उलझते जाते खुद ही परेशान हो जाते, जैसे मकड़ी जाला खुद ही बुनती और उसमें फंसती चली जाती है। कभी कभी हम भी अपने आप को ब्राह्मण होने के बावजूद भी कहीं न कहीं उलझा देते हैं, और वो उलझन भरा जीवन फिर धीरे धीरे बोझ लगने लगता है, उसमें दुख की अनुभूति होने लगती है, परेशानी अनुभव होने लगती। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस जीवन को छोड़ के इससे तो हम पहले वाले जीवन में ही अच्छे थे। तो उलझन वाली जीवन जी रहे हैं, मूंज वाली जीवन जी रहे हैं, या ब्राह्मण जीवन हमारा खुशी का जीवन है, ये अपनी चेकिंग हमको करनी है। अगर खुशी नहीं है तो उसका कारण क्या है? कई बार बाबा कहते पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो खुशी कम है इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे संकल्प में, बोल में, कर्म में अपवित्रता है। जब अपवित्रता की बात हम करते हैं तो हम सोचते पांच विकार, पांच विकारों के वश या अन्य छोटे छोटे विकारों के वश जो हमारे संकल्प, बोल, कर्म होते हैं वही अपवित्रता है। पर बाबा ने एक वाणी में कहा कि अपवित्रता सिर्फ पांच विकारों को नहीं कहा जाता, परंतु अयथार्थ, व्यर्थ और साधारण संकल्प, बोल और कर्म भी अपवित्रता है। क्या क्या? अयथार्थ, व्यर्थ और साधारण संकल्प, बोल और कर्म भी अपवित्रता है। अब अयथार्थ माना क्या? यथार्थ किसको कहेंगे? यथार्थ संकल्प बोल कौन से? जो बाबा की श्रीमत के अनुसार हो, या जैसे बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर, विकारों से परे होकर, बाबा की याद में रहकर अन्य के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखकर के जो भी हम संकल्प बोल कर्म करेंगे वो यथार्थ है, श्रेष्ठ है, समर्थ है। नहीं तो अगर अयथार्थ है, जो नहीं बोलना चाहिए वो हमने बोल दिया, जो नहीं सोचना चाहिए हमने सोच लिया मन में, सोचते इसका क्या हुआ, सोच ही तो रहे ना, किसको थोड़ी पता है, इसका कोई पाप थोड़ी लगता है, कोई ऐसा कर्म हमने कर लिया अयथार्थ जो नहीं करना चाहिए, या कोई व्यर्थ संकल्प बोल कर्म किए, साधारण संकल्प बोल कर्म किए, हम सोचते इससे थोड़ी ना कुछ, व्यर्थ को भी कभी हम अपवित्र नहीं मानते, साधारण को भी अपवित्रता नहीं मानते, तो अयथार्थ की तो बात ही बुद्धि में नहीं आती। लेकिन बाबा कहते अयथार्थ संकल्प बोल और कर्म, व्यर्थ और साधारण संकल्प बोल और कर्म, ये सब जब हम कर लेते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन सूक्ष्म में हमने बाबा की आज्ञा की अवज्ञा कर दी। जैसे अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा ईर्ष्यावश कोई संकल्प आता वो भी पाप है, और कई बार बाबा कहते व्यर्थ संकल्प चलाना भी अपवित्रता है। तो ये सब बातें अयथार्थ, किसी के प्रति अशुभ भावना रखना, किसी के लिए बुरा सोचना, बुरा बोलना, हम उसको सोचते तो कॉमन है ना, उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हमारे मुंह से उसके लिए ऐसा निकला, ये कोई अपवित्रता थोड़ी है। लेकिन नहीं, हंसी मजाक में भी अगर हम कोई साधारण संकल्प बोल कर्म भी किसी के लिए कह देते और उसका उसको बुरा लग जाता है वो भी अपवित्रता है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते सारे दिन भर में अगर हमारे ऐसे अयथार्थ व्यर्थ और साधारण संकल्प बोल और कर्म होते हैं तो हमें खुशी कैसे मिलेगी, कहीं ना कहीं हमारी खुशी जरूर गायब होगी और हम सोचते रहेंगे कि हमने तो सब ठीक किया। मोटे मोटे तौर पर अपनी चेकिंग करेंगे तो हम सोचेंगे नहीं ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी आंतरिक खुशी गायब हो जाती। फिर हम खुशी को प्राप्त करने के लिए क्या करते, ब्राह्मण जीवन है, इतना कीमती जीवन है, बाबा ने जो ऊंचा लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को अगर हम नहीं प्राप्त कर पा रहे, आंतरिक खुशी हमको नहीं मिल रही है, इतना हम ज्ञान योग धारणा सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन जो थोड़ा बहुत करते तो हम हद की चीजों के पीछे लग जाते, या तो हद के साधनों में बुद्धि लगाते, स्थूल साधन चाहे घर में चाहे सेंटर पर, स्थूल साधनों को प्राप्त करने में, और वो साधन मिल गया खुश हो जाते, ये साधन मिल गया खुशी मिल गई, थोड़े समय के लिए खुशी मिल गई, हद की प्राप्ति कोई हो गई, कुछ हम प्राप्त करना चाहते, कुछ प्राप्तियां चाहते हैं जीवन में, थोड़े समय के लिए वो हो गई खुश हो जाते, हमने कोई काम किया उसमें हमको सफलता मिल गई खुश हो गए, और अगर असफल हो गए तो, या जो मेरी प्राप्ति की इच्छा थी वो मेरे को नहीं मिली तो हद की प्राप्ति, हद के साधन, हद की इच्छाएं, सफलता, ये सबको हमने अपने जीवन में खुशी का आधार बना लिया ब्राह्मण जीवन में। बाहर वाले तो करते ही हैं, लौकिक दुनिया वाले तो, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद भी आज क्या है, छोटी छोटी चीजें, अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो भी उसको दुख है। प्राप्ति छोटी सी हद की चीज है। तो छोटे छोटे साधन, छोटी छोटी प्राप्तियां, सफलता, छोटी छोटी सफलताएं मिलती, खुश हो जाते। खुश भले हो, लेकिन अगर असफलता मिली तो दुखी ना होवे ना। दोनों में समान स्थिति हमारी रह सके। और इसके साथ साथ जब हम सेवा करते हैं, सफलता मिलती है, तो क्या होता है, मान्यता भी मिलती है। ये बहुत अच्छा सेवाधारी है, ये बहुत अच्छी बहन है, ये बहुत अच्छा भाई है, इसने बहुत अच्छी सेवा की, नामाचार भी होता है, मान्यता भी मिलती है, तो उस समय तो खुशी होती। और अगर कभी हमसे काम बिगड़ गया, कोई काम हमको सौंपा गया वो ठीक से नहीं हुआ, हमको किसी ने दो शब्द बोल दिए, उस समय अच्छा किया तो अच्छा बोला, बिगाड़ दिया तो अगर बुरा बोला, वो हमको सहन नहीं होता, तुरंत खुशी गायब हो जाती है। तो ये सब खुशी, या फिर हम अपने मन को जो अच्छा लगता है, मन पसंद काम करने को मिले, मन पसंद साथी के साथ रहने को मिले, मन पसंद स्थान मिले सेवा करने के लिए, सब कुछ हमारे अनुसार हो, मेरे मन को जो अच्छा लगता है, बस यही जो अच्छा लगता है वही होना चाहिए, वही व्यक्ति के साथ में सेवा करूं, उसी स्थान पे करूं, वही मेरे मनपसंद संकल्प हो, मेरे मनपसंद प्राप्ति हो, मनपसंद सेवा हो, हर चीज मन के अनुसार हो। और अगर मिल गई तो हम खुश, और अगर नहीं मिली, उसके विपरीत कोई ऐसा साथी मिल गया जिसका स्वभाव संस्कार हमारे साथ मेल नहीं खाता, या संगठन में सेवा करते किसी ने हमको सहयोग नहीं दिया और उसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाए और हमको डांट खानी पड़ी, तो क्या होगा, अंदर अंदर हम दुखी होते रहते हो, फलाने ने काम नहीं किया और मेरे को सुनना पड़ा, और हमारी खुशी गायब हो जाती। छोटी छोटी बातें हमारी खुशी को गायब कर देती, अर्थात हमने अपने ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है, ऊंचा लक्ष्य जो बाबा ने दिया, आंतरिक खुशी, रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी का, उसके बदले लक्ष्य क्या बना लिया, हद की खुशी में खुश रहने का। अर्थात हमने जो बाबा ने हाईवे दिया, हाईवे पे चलो तो कैसे चलते, फास्ट गाड़ी चलती है, बड़ी अच्छे से चलती है, और गली कूचे में जाओ तो बहुत मेहनत लगती है, टर्निंग बहुत आएंगे, लोग बहुत मिलेंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा। ऐसे ही बाबा कहते हद की प्राप्तियों की गलियों में हम भटक जाते हैं। तो बेहद की प्राप्ति से स्वयं को वंचित कर देते, और जब वंचित हो जाते तो दुखी हो जाते, हमारी खुशी गायब हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति होती तो आप सोचिए वो ब्राह्मण जीवन कैसा होगा। आप सब कौन से जीवन में जी रहे, अपने को चेक करते जाना। और जब ऐसी स्थिति में आ जाते तो कई बार हम क्या कहते, अपने आप को ही धोखे में रखते हैं, वो सोचते नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो सब ठीक कर रही हूं, लोग मेरे को समझते नहीं है, लोग मेरे को गलत समझते हैं, मेरे को अभी तक पहचाना नहीं है। लेकिन वास्तव में हमने अपने आप को ही ठीक से से पहचाना नहीं है, हमने बाप को ही ठीक से पहचाना नहीं है, हमने बाबा की बातों को ही ठीक से समझा नहीं है, उसको कैसे यूज करना है, बाबा की ज्ञान की बातों को उसको ही ठीक से समझा नहीं है, और वो पुरुषार्थ करने के बदले हम अपने आप को जो है जैसे है हम तो बहुत ठीक है समझ के चलते रहते, और इसलिए जब ठीक समझ के चल रहे हैं तो कोई अगर आपको करेक्शन देगा तो अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगता। किसी की करेक्शन भी हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, मेरे को करेक्शन देने की आवश्यकता नहीं, मेरे को समझ है, मैं सब ठीक कर रही हूं या कर रहा हूं मुझे मत बताओ। तो अंदर से हम अपने आप में ऐसे बनते जाते जो किसी को सुनने को भी तैयार नहीं होते, तो हमारे अंदर कोई करेक्शन भी हो नहीं सकती, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ने के बदले, ऊंची स्थिति में जाने के बदले दिन पर दिन क्या होते जाएंगे, नीचे की स्थिति में आते जाते, और फिर भगवान को क्या कहते, पुकारना शुरू करते, बाबा ये कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो। लेकिन बाबा कहते, आप बच्चों को मांगना चाहिए या नहीं, भगवान हमारा सब कुछ बन गया फिर भी हम उससे मांगे, शोभा देता है हमको, हम भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा कहते, कई बार हम ऐसे नहीं मांगते लेकिन बहुत ही रॉयल रूप से मांगते। रॉयल रूप से कैसे मांगते बाबा से, रॉयल रूप से कैसे मांगते, कहते बाबा ये तो आपका ही काम है ना, आप तो करोगे ही ना। तो बाबा कई बार कहते, भगवान को हम क्या बना देते, इंसान किसको कहते, जो कहने से करे, कहने से करे, और जो कहने से भी नहीं करे वो असुर, और भगवान जो स्वयं ही बच्चों के लिए सब कुछ करता है उसको भी हम कह करके याद दिलाते तो क्या बना देते, हमारे जैसा साधारण इंसान बना देते। तो बाबा कहते, आप बच्चों को रॉयल रूप में भी भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए मांगने का। कई बार बाबा कहते, मांगने से मरना भला, वो तो सर्वशक्तिवान अभी आकर के सब कुछ हमको लुटा रहा है, हम अपना संबंध जोड़ करके जितना लेना चाहें, जो लेना चाहे, जितनी बड़ी झोली भरना चाहे बुद्धि की, उतना हम खजाने से अपनी झोली को भर सकते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, और फिर नहीं समझने के कारण अपनी झोली खाली करते जाते, जितनी भरती उसको भी व्यर्थ बातों में उलझाकर खाली करते जाते, और फिर कई बार तो ऐसा करते करते बहुत कड़ी भूल भी हमसे हो जाती, समझ नहीं आता ना, कंफ्यूजन में रहते या उलझन में रहते, ठीक से जजमेंट नहीं कर पाते राइट रॉन्ग का, यथार्थ क्या है अयथार्थ क्या है, उस समय ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते, तो कई बार हमसे बहुत कड़ी भूल भी हो जाती। लेकिन ऐसी भूल को भी इस संगम युग पर भगवान क्या करता, रहम दिल है ना, बाबा मुरली में क्या कहते, फिर भी बाबा को सच सच बता दो, माफी मांग लो, तो किस तरह की माफी से बाबा माफ कर देगा, किस तरह की माफी से बाबा माफ कर देगा, बाबा हम बच्चों को कहते, कई बार हम किस तरह से माफी मांगते, ऊपरी तौर पर कोई कड़ी भूल हो गई, कोई गलती हो गई, हम पकड़ा गए, सबको पता चल गया, अब सामने सब बातें हो रही है, वातावरण बन रहा है, अपने आप को छुड़ाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए उस समय हम क्या कह देते, सॉरी, ऊपर से कह दिया सॉरी, मुझे माफ कर दो, पर अंदर अंदर में कोई भी सॉरी महसूस ही नहीं होती, या मेरी गलती है ये भी महसूस नहीं होता, या मेरी भूल हुई है मुझे इसमें करेक्शन करना चाहिए ये भी महसूस नहीं होता, और उस समय सॉरी करते कुछ समय बाद फिर वही भूल रिपीट कर देते। तो बाबा भी समझते हैं, बाबा कहते बच्चे असली माफी क्या है, माफी की विधि है महसूस करना, दिल से महसूस करना, जो दिल से महसूस करता है ना उसके अंदर परिवर्तन आता है, जिसको महसूसता शक्ति नहीं है जिसके अंदर, वो कभी अपनी भूल को परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है अपने स्वभाव संस्कार में तो उसका कारण यही है, हम करते जा रहे, सोचते भी है नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर कहते क्या करूं, बार बार हो जाता है, नहीं चाहते भी हो जाता है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने दिल से महसूस नहीं किया, और ऊपर से चतुराई दिखाकर अगर हम महसूस करते और ऊपर से सॉरी कर लेते तो बाबा के सामने बाबा को भी कई बार लिख देते पत्र, पर बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, बाबा तो हमारे अंदर को भी जानता है ना कि ये किस विधि से माफी मांग रहे, सिर्फ ऊपरी ऊपरी कर रहे या अंदर से कर रहे, तो बाबा क्या करेगा, मुस्कुराएगा, उसको छोड़ भी देगा, लेकिन दिल से उसको माफ नहीं करता या उसकी माफी को मंजूर नहीं करता बाबा, भले वो माफी मांग रहा है चलाने के लिए, बड़ों को समझाने के लिए, लेकिन उस माफी को भगवान कभी भी मंजूर नहीं करता। मंजूर कब होगी, जब दिल से महसूस करके सॉरी करके उसको हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तन कर देते। इसलिए बाबा कहते मैं भले भोला हूं, समझता भी हूं, बच्चे मुझे चला रहे हैं भोलानाथ समझकर, लेकिन मैं जानते समझते हुए भी अनजान बन जाता हूं। अगर बाबा चाहे तो क्या कर सकता है, अगर बाबा चाहे तो क्या कर सकता है, एक एक की गलती को अनाउंस करके बता सकता है, उसके पास सब रिकॉर्ड है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, अनजान बन जाता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, पर हम देख रहे हैं समझ रहे हैं फिर भी करते जाते, तो हम अपना कौन सा खाता बनाते जाते और कितनी सजा के भागी अपने आप को बना लेते, कितने अयथार्थ संकल्प बोल कर्म हम इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे कर लेते। इसलिए बाबा कहते इस ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए हमको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। फिर हम जो सेवा भी करते, भले हमने बहुत बड़े से बड़ा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उस सेवा के बाद, बड़े से बड़े काम को करने के बाद अगर मेरी खुशी, बेहद की स्थिति, बेहद की खुशी से मैं नीचे आ जाती हूँ तो मेरी वो सेवा सच्ची सेवा कहलाएगी? सेवा की मैंने, यूं तो बहुत दिल से की, बड़े से बड़ा काम मैंने असंभव से असंभव काम करके दे दिया, लेकिन सेवा करने के बाद मेरी स्थिति खराब हो गई, मेरी खुशी गायब हो गई, कुछ छोटा मोटा कारण बन गया। मैं उस बेहद की खुशी की स्थिति से नीचे आ गई, हद की प्राप्ति के कारण या हद की किसी बात के कारण, हद के किसी कारण की वजह से मैंने अपनी वो सेवा से मैं डिस्टर्ब हो गई। तो उस सेवा को बाबा क्या कहते? सच्ची सेवा? आपको लग रहा है मैंने बहुत दिल से की, मैंने तो बहुत मेहनत की, मैंने तो इतना कठिन से कठिन कार्य कोई नहीं कर सकता था वो मैंने कर दिया। और अगर ऐसा करने के बाद आपकी खुशी गायब हो गई तो वो सेवा क्या है? सच्ची सेवा? सच्ची सेवा नहीं ना, मिक्स सेवा। तो सेवा भी हमको खुशी देने वाली हो, जो भी करे। बाबा कहते अगर कभी हो जाता है आपने सेवा की, बहुत दिल से इतना किया, आपका किसी ने नाम ही नहीं लिया, आपकी किसी ने महिमा नहीं की, दो शब्द प्यार के आपको नहीं बोले, किसी ने सारा दिन आपने काम किया, खाने पीने के लिए नहीं पूछा, नाश्ते के लिए नहीं पूछा, कई बातें हो जाती है, और ऊपर से इतना सब करने के बाद छोटी सी कोई कमी रह गई सेवा में, उसके लिए आपको डांट पड़ गई, तो आपका मन क्या हो जाता? खराब हो जाता है। लेकिन बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में ये बातें तो आएंगी ही, कि नहीं आएंगी? आएंगी ना। लेकिन मेरा क्या होना चाहिए? बाबा कई बार कहते कुछ भी करो, कितनी भी बड़ी सेवा करो, कितना भी बड़ा काम करो, अगर उससे मेरी स्थिति खराब होती है तो वो सेवा भले छोड़ दो। जिन बातों के कारण आपका दिल दुखता है उन बातों को बुद्धि से निकाल दो, उसको छोड़ दो। किसी की कोई बात से आपको कष्ट पहुंचा है, किसी ने कुछ आपके साथ किया है, उन बातों को ही छोड़ दो। कोई प्राप्ति नहीं हो पाई उसके कारण आपको मन में बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैंने इतना अच्छा, मेरा चांस चला गया, फलाने को चांस मिल गया, या फलाना मेरे को ऐसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ये ऐसा हुआ, कई बातें आती है, वो प्राप्ति भी छोड़ दो, वो बातें छोड़ दो, वो सेवा छोड़ दो जिससे आपकी अवस्था खराब होती, लेकिन अपनी खुशी को खत्म नहीं होने दो। अगर खुशी ही चली गई तो आप जो कर रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आंतरिक खुशी हमारी सदा बनी रहनी चाहिए, वो कब बनी रहेगी? बाबा हमको संगम युग पर ब्राह्मण बना के सेवाधारी तो बनाते, लेकिन आप सब समझते सेवा आप कर रहे कि बाबा कर रहे? सेवा कौन कर रहा है? बाबा तो बुद्धिवानों की बुद्धि है, निमित्त दिखता है कि हम सेवा कर रहे, हमने फलाने को ज्ञान दिया, उसका जीवन बनाया, उसको चेंज किया, उसको ये फायदा किया, उसको खुशी मिली, उसको शांति मिली, लेकिन बाबा कहते बाबा बुद्धिवानों का बुद्धि वो आत्माओं को टच करता है। निमित्त नाम आपका है लेकिन काम कौन कर रहा है? नाम आपका है, आपने किया, सामने आप दिख रहे हो, बाबा दिखाई नहीं देता है, लेकिन काम बाबा कर रहा है, नाम बच्चों का हो रहा है। और ऐसे में अगर मुझे मैपन आ जाता है कि कि मैंने किया तो निश्चित खुशी गायब होनी है। जो मैंपन में आएगा उसकी खुशी गायब होगी ही, और जो अपने को निमित्त समझ के चलेगा, बाबा करावन हार है, मैं करण हार हूं, मैं निमित्त हूं, ऐसी भावना से बाबा मेरी बुद्धि को टच कर रहा है, बाबा उन आत्माओं को टच कर रहा है, बाबा उनका कल्याण कर रहा है, बाबा ने उनका जीवन बनाया हर बात में, जितना हम बाबा को साथी बनाकर साथ में लेकर सेवा करते तो कभी हमारे मुख से ये नहीं निकलेगा मैंने किया। क्या निकलेगा? बाबा ने कराया, मैंने ये सेवा की नहीं, बाबा ने मेरे से कराई, बाबा ने ये कठिन से कठिन कार्य मेरे से करा लिया, बाबा ने मुझे मदद की। ये बार बार बाबा बाबा आएगा, न कि मैंने किया मैंने किया, ये बात नहीं आएगी, बाबा ने कराया। तो एक बार की घटना आपको सुनाते, आपने महाभारत की घटना सुनी होगी। एक बारबरिक पात्र था महाभारत में, उसको मोक्ष चाहिए था। उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने कहा कि अगर तू भगवान के हाथ से मरेगा तो तेरे को मोक्ष प्राप्त होगा। तो कहा भगवान के हाथ से कैसे मरूंगा, उसके लिए मुझे भगवान से युद्ध करना पड़ेगा, और अगर युद्ध करना है तो मुझे अपने अंदर इतनी शक्ति लानी पड़ेगी। उसने बहुत तपस्या की, बहुत शक्ति अपने अंदर धारण की, और उसको माँ ने कहा था हमेशा तुम कमजोर पक्ष का मदद करना। तो महाभारत युद्ध के समय वो कौरवों की तरफ मदद करता, क्योंकि कौरव कमजोर थे और पांडवों की तरफ श्री कृष्ण थे। लेकिन ऐसा करने से ये पक्का था वो जिधर जाएगा उसकी विजय होगी, उसमें इतनी शक्ति थी, और उसको मोक्ष चाहिए था। तो युक्ति से भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, उसने उसकी इच्छा थी मैं भगवान के हाथ से मरूं, तो उसको भगवान ने युक्ति से तीर चला के मारा। और उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने कहा मुझे महाभारत युद्ध देखना है, मुझे तब तक जीवित, तो कटा सिर ही उसका एक वृक्ष पर, ऊंचे वृक्ष पर जीवित रखा गया, और उसने पूरा महाभारत युद्ध को देखा। जब महाभारत युद्ध पूरा हुआ, पांडवों की विजय हुई, तो पांडव बहुत नशे में आ गए, खुशी में आ गए, जोश में आ गए, और अपनी अपनी महिमा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण तो जैसे लोग कहानी में बताते उनके साथ ही थे, लेकिन वो अपने अपने की, अर्जुन के तीर से ऐसा हुआ, भीम के तीर से फलाना महावीर मर गया, फलाना महारथी मर गया, बड़े उमंग उत्साह से जोश में। तो श्री कृष्ण भगवान को ऐसा लगा उस कथा के अनुसार कि इनको अपना नशा चढ़ गया है, तो उन्होंने उसको बारबरिक के बारे में बताया कि चलो ऐसे ऐसे उसको वहां रखा हुआ, उसने पूरा महाभारत युद्ध देखा है, उससे हम चल के पूछते हैं कि क्या हुआ, उससे पूछते हैं। तो सभी पांडव कृष्ण के साथ वहां गए और उससे कहा कि देखो हम विजयी हो गए, आप बताओ किसके तीर ने किसको मारा, किसका शौर्य ज्यादा था, किसने ज्यादा वो किया। तो बारबरिक हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा, तो उनको लगा है तो हमारा अपमान कर रहा है, तो कहा आप हमारा अपमान कर रहे हो, हम तो विजयी होकर आए और आप हंस रहे हो। तो कहा नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए हंस रहा हूं, उसने वो दृश्य दिखाया उनको, कृष्ण को कहा आप इनको वो दृश्य दिखाओ महाभारत का कि कैसे ये तीर चलाते थे और कौन मरता था। तो जब सारा दृश्य उनको दिखाया तो उसमें उसने बारबरिक ने बताया कि देखो आप तीर चलाते थे, लेकिन जिस पर तीर मारते थे उसकी गर्दन कट के गिरने से पहले भगवान का स्वदर्शन चक्र वहां चलता था, उसके द्वारा उसकी गर्दन कटती थी, आपके तीर से नहीं कटती थी। आपने सोच लिया हमने मारा उसको, हमने उसको मार गिराया, लेकिन आपने नहीं मारा, असल में किसने गिराया? स्वदर्शन चक्र भगवान का जो चला उससे उसकी गर्दन कटी। तो उनको ये समझाया गया कि वास्तव में नाम आपका हुआ है लेकिन काम किसने किया? भगवान ने। तो इसी प्रकार हम भी सच्चे पांडव है ना, कभी कभी अपनी सेवा का हमको भी नशा चढ़ जाता है, मैंने किया, लेकिन हमको सदा बुद्धि में रहना चाहिए कि किसने किया। नाम हमारा है, काम बाप का है। बुद्धिवानों की बुद्धि आत्माओं को टच करता है, उनका कल्याण करता है, उनका भला करता है, उनको सर्व प्राप्तियां हमारे द्वारा कराता है। आप तो निमित्त माध्यम है ना भगवान के, आपके द्वारा जिन आत्माओं को जो प्राप्ति होनी है वो कराता, लेकिन हमें सदा बुद्धि में ये रहनी चाहिए कराने वाला करण करावनहार स्वयं भगवान है। और जब ये बात जितनी बुद्धि में रहती है तो हमारी स्थिति कैसी होगी? सब कुछ करते हम सदा हल्के और हर हाल में सदा खुश, कुछ भी हो जाए अंदर से हमारी खुशी कभी भी गायब नहीं होगी। इसीलिए पांडवों का कौन सा गायन है, जब सारा युद्ध हो गया तो पांडव कहाँ गए? पहाड़ों पर जाकर गल गए, गल मरे। तो कब मरना है वो, कब गलना है? अभी जब हम ब्राह्मण या पांडव अपने देह अभिमान से, अपने स्वभाव संस्कार से, अपनी बुराइयों से अपने आप को गला देंगे, और तब हमारी स्थिति कितनी ऊंची बन जाएगी। और उस ऊंची स्थिति में जितना हम स्थित रहेंगे और उस ऊंची स्थिति में स्थित होकर के जब नीचे होने वाली सारी बातों को देखेंगे, तो उस ऊंची स्थिति में आप जब गल गए तो पुरानी दुनिया के दुखों के प्रभाव से भी परे हो जाएंगे। बातें दुख की, दुनिया ही दुख की है। यहाँ पर तो हर पल कुछ न कुछ दुख देने वाली बातें होंगी, आपको दुख देने वाली बातें आएंगी, कोई न कोई माध्यम बनेगा। लेकिन जब उस ऊंची स्थिति में पहुंच जाएंगे ना, तो उस दुख की दुनिया के प्रभाव से भी परे, दुनिया के आकर्षणों से भी परे, साधनों के हद की प्राप्तियों से भी परे, सब बातों से परे जब हम हो जाते, तो हमारा ब्राह्मण जीवन इतना ऊंची स्थिति वाला हो जाता, जो कैसी भी बातें आए, कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी कारण बने, लेकिन हम सदा ही हर हाल में अपनी रूहानी खुशी, आंतरिक खुशी, अविनाशी खुशी को सदा प्राप्त करते रहते, वो हमारी कभी भी गुम नहीं होती। तो ब्राह्मण जीवन जो इतना श्रेष्ठ अनमोल जीवन हमको मिला है, भाग्य विधाता ने स्वयं हमारा भाग्य लिखा है, लेकिन उसकी कलम हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहें वैसा अपना भाग्य अभी अपने हाथ से लिख सकते हैं। तो आप सभी अवश्य ही अपने जीवन को, ब्राह्मण जीवन को कैसा बनाएंगे, मूंझने वाला, उलझन वाली जीवन, या सदा रूहानी खुशी, आंतरिक खुशी, अविनाशी खुशी वाली जीवन? तो जरूर सभी ऐसी ही जीवन बनाएंगे कि जीवन में सदा कुछ भी होता रहे, ऊपर नीचे पचासों बातें आएंगी। अभी तो बाबा कहते दुखों के पहाड़ गिरने हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आनी है, ब्राह्मणों के ही ब्राह्मणों के साथ संस्कार का टकराव होना है, पेपर सबसे बड़े ब्राह्मणों का है, शरीर का पेपर भी आना है, लेकिन सारे पेपर में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, ब्राह्मणों से, भूत प्रेत से, जो भी जितने भी प्राकृतिक, हर प्रकार के जो भी पेपर आने हैं, उन सब पेपर के प्रभाव से परे रहने के लिए हमको अपने चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट बनना होगा। जितना जितना हम उसका स्वरूप बनते जाते उतना ही हम परफेक्शन को प्राप्त होकर सदा हर गुण शक्ति खुशी शांति आनंद सबसे भरपूर होंगे। तो ये ब्राह्मण जीवन हमको क्यों बाबा कहता कि सतयुग से भी ज्यादा अच्छा डायमंड युग है ये। सतयुग तो फिर भी गोल्डन युग है लेकिन संगम युग डायमंड युग है, हीरे तुल्य जीवन है। तो इस हीरे तुल्य जीवन को सचमुच हम हमारी आत्मा को इतना हीरे जैसा चमकीला प्योर बनाए तो खुशी हमारी सदा ही हमारी अपनी चीज हो जाएगी, किसी से न मांगनी पड़ेगी बल्कि हम औरों को खुशी बांटते रहेंगे। ऑप्शन